अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि हमारे हाथ में कोई बहुत पुराना पारिवारिक दस्तावेज लग गया है, हम उसे पढ़ रहे हैं, उम्र का हिसाब लगा रहे हैं, पीढ़ियों को जोड़ रहे हैं, और अचानक, मतलब अचानक से एक ऐसा नतीजा सामने आता है जो गणित और सामान्य ज्ञान दोनों के हिसाब से पूरी तरह से असंभव है।
हाँ, एक ऐसा नतीजा जो बिल्कुल भी हजम नहीं होता।
मतलब नतीजा ये निकलता है कि एक परदादा और उनका परपोता दोनों एक ही समय में एक ही कॉलेज में रूममेट होने चाहिए थे।
अरे बाप रे, ये तो कोई टाइम ट्रैवल जैसी बात हो गई।
बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि रॉबर्ट वेनॉय ने जब उत्पत्ति यानी जेनेसिस के शुरुआती 11 अध्यायों का विश्लेषण किया तो कुछ ऐसा ही गणितीय विरोधाभास सामने आया। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं कि क्या प्राचीन ग्रंथों में दी गई ये वंशावलियां सच में कोई टाइमलाइन या कैलेंडर हैं।
और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन प्राचीन सूचियों को आज के किसी आधुनिक कैलेंडर की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो समय के सारे नियम टूटते हुए नजर आते हैं। हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस प्राचीन डेटा को सही नजरिए से देखना सीखें, बिना उस तकनीकी भारीपन के जो अक्सर ऐसे विषयों में आ जाता है।
सही कहा आपने। तो चलिए सीधे उस गणितीय विरोधाभास पर चलते हैं जिसने बाइबल की आम समझ को पूरी तरह से चुनौती दे दी है। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जो वंशावली दी गई है, अगर हम बस सीधा सीधा गणित लगाएं तो क्या होता है?
देखिए, अगर हम उस अध्याय को उठाते हैं और एक इंसान की उम्र को उसके बाद आने वाली पीढ़ी की उम्र से जोड़ते जाते हैं, तो हम एक सीधी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐतिहासिक जलप्रलय, जिसे हम नोआज फ्लड भी कहते हैं, वहां से लेकर अब्राहम के जन्म तक का कुल समय केवल 292 वर्ष निकलता है।
सिर्फ 292 साल। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये बहुत बड़ी उलझन पैदा करता है ना?
बिल्कुल, बहुत बड़ी उलझन। क्योंकि अगर हम इस गणित को सच मान लें तो बाइबल के ही विवरण के अनुसार नूह जल प्रलय के बाद 350 साल तक जीवित रहे थे,
ओके।
और उनके बेटे शेम उनकी उम्रें जल प्रलय के बाद 500 साल और रहीं।
तो मतलब अगर जल प्रलय और अब्राहम के जन्म के बीच केवल 292 साल का फासला है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि नू और शेम दोनों अब्राहम के जन्म के समय न केवल जीवित थे बल्कि वो लोग उनके समकालीन थे।
एग्जैक्टली। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर हम अब्राहम की उम्र देखें तो उनकी मृत्यु 175 वर्ष की आयु में हुई थी।
तो अगर हम इस गणित को थोड़ा और आगे बढ़ाएं,
हाँ, अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब है कि शेम ने अब्राहम का पूरा जीवन देखा, उनकी मृत्यु देखी, और उसके बाद भी वो जीवित रहे।
ये गणित तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि आपके परदादा और आप एक ही कॉलेज में रूममेट थे। मतलब क्या प्राचीन लोगों को बुनियादी गणित नहीं आता था? जब हम अब्राहम की कहानी पढ़ते हैं, उनके जीवन के संघर्ष देखते हैं, तो क्या कहीं भी नूह या शेम का कोई जिक्र आता है?
यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उनके ऊर शहर से निकलने से लेकर कनान जाने तक के पूरे विवरण में कहीं भी इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि नूह या शेम उनके आसपास थे। आप खुद सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बुजुर्ग और श्रद्धेय पूर्वज उस समय जीवित होते तो सामाजिक रूप से उनका उल्लेख तो जरूर होना चाहिए था ना?
बिल्कुल होना चाहिए था।
लेकिन ग्रंथ इस बारे में पूरी तरह से मौन है, वहां एकदम सन्नाटा है।
और मुझे लगता है कि ये मौनी हमारा सबसे बड़ा सुराग है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें जोड़ घटाव नहीं आता था। मतलब अगर ग्रंथ में इतना बड़ा विरोधाभास है तो जाहिर है कि हम उन सूचियों को वैसे पढ़ ही नहीं रहे जैसे उन्हें लिखे जाने का इरादा था।
एकदम सही। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये बिना किसी गैप वाली एक टाइमलाइन है, जहां बस एक नाम के बाद तुरंत अगली पीढ़ी आ जाती है।
हाँ, जैसे ही कोई एक्सेल शीट हो। लेकिन अगर हम इस 292 साल वाले गणित को एक पल के लिए सच मान भी लें, बस बहस के लिए, और इसे इतिहास के पन्नों पर रखें, तो मुझे लगता है भूविज्ञान और पुरातत्व की दुनिया में तो भूचाल ही आ जाएगा।
भूचाल आना तो स्वाभाविक है, मैं बताती हूँ क्यों। अगर हम ऐतिहासिक तारीखों की बात करें तो अब्राहम का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व माना जाता है।
ठीक है, 2000 ईसा पूर्व।
अब अगर हम 2000 ईसा पूर्व से 292 साल पीछे जाएं, तो ऐतिहासिक जलप्रलय की तारीख लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास बैठती है।
2300 ईसा पूर्व, मतलब ये वो समय होना चाहिए जब हमें पूरी दुनिया के पानी में डूबने के सबूत मिलने चाहिए।
बिल्कुल, हमें एक वैश्विक विनाश के भूवैज्ञानिक प्रमाण मिलने चाहिए। लेकिन जमीन के नीचे दबे साक्ष्य एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं।
हाँ, क्योंकि 2300 ईसा पूर्व के आसपास तो मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र में पूरी तरह से विकसित सभ्यता फल फूल रही थी, उनका कामकाज चल रहा था।
हाँ, और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो जेरिको जैसे शहरों का इतिहास तो 8000 ईसा पूर्व तक जाता है।
बाप रे, 8000 ईसा पूर्व!
हाँ, और पुरातात्विक खुदाई में इन सभ्यताओं के लगातार बिना रुके विकास के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ कोई ऐसी अचानक आई मिट्टी की मोटी परत या कोई ऐसा भूवैज्ञानिक व्यवधान नहीं है जो ये साबित करे कि 2300 ईसा पूर्व में पूरी दुनिया एक साथ पानी में डूब गई थी।
मतलब सारी मानव जाति के नष्ट होने का कोई सबूत नहीं है।
हाँ, तो इस वैज्ञानिक वास्तविकता ने तो पुराने समय के विचारकों के बीच भारी संकट पैदा कर दिया होगा। शुरू किया कि पृथ्वी का इतिहास तो उस 6000 साल की आम समझ से कहीं ज्यादा पुराना है, तो लोगों को लगा कि विज्ञान और धर्म ग्रंथ अब आमने सामने आ गए हैं।
और इसी संकट से निपटने के लिए मुझे याद आ रहा है, फिलिप गोसे नाम के एक सज्जन ने 1857 में एक बहुत ही अजीब सा सिद्धांत पेश किया था। क्या नाम था उसका? ओम्फालोस।
हाँ, ओम्फालोस सिद्धांत, या जिसे आयु का आभास भी कहा जाता है।
हाँ, आयु का आभास। मतलब गोसे का वो सिद्धांत अपने आप में एक बहुत ही अजीब दार्शनिक विचार है। उनका तर्क था कि जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो उसने इसे इस तरह से बनाया कि ये पुरानी दिखे।
मतलब उन्होंने दुनिया को एक रेडीमेड इतिहास के साथ बनाया।
एग्जैक्टली। जैसे आदम का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, फिर भी गोसे का कहना था कि ईश्वर ने उसे नाभि के साथ बनाया था। पेड़ों को बिना उगे ही उनके तनों में छल्लों के साथ, यानी ट्री रिंग्स के साथ बनाया गया।
और वो जीवाश्मों वाला उदाहरण?
हाँ, उन्होंने कहा कि चट्टानों के अंदर जीवाश्मों को ऐसे सजा दिया गया जैसे किसी पुडिंग के अंदर प्लम सजे हों। मतलब गुस्से के अनुसार ये सारा पुराना इतिहास सिर्फ एक भ्रम था जो ईश्वर ने दुनिया को मैच्योर दिखाने के लिए रचा था।
गुस्से को शायद लगा था कि उनका ये सिद्धांत विज्ञान और धर्म के झगड़े को हमेशा के लिए सुलझा देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।
होना ही था।
वैज्ञानिकों ने इसे इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि आप इसका परीक्षण नहीं कर सकते, और धर्मशास्त्रियों ने इसे इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इसके जो निहितार्थ थे वो बहुत भयानक थे।
और इसके भयानक होने की वजह बहुत साफ है। आप देखिए ना, अगर गुस्से का सिद्धांत सही है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने जानबूझकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को धोखा देने के लिए झूठे सुराग छोड़े।
बिल्कुल, एक ऐसा ईश्वर जो झूठा इतिहास गढ़ता है वो सत्यवादी कैसे हो सकता है?
वही तो, जो कभी अस्तित्व में रहे ही नहीं ऐसे जानवरों के जीवाश्म अगर कोई चट्टानों में डाल रहा है तो वो एक धोखेबाज बन जाता है। और अगर ईश्वर भौतिक दुनिया में धोखा दे सकता है तो फिर आध्यात्मिक बातों पर कोई कैसे भरोसा करेगा?
ये समाधान तो मतलब समस्या से भी बड़ा खतरा बन गया था।
और इसीलिए विलियम हेनरी ग्रीन और बीबी वॉरफील्ड जैसे विद्वानों ने एक बिल्कुल अलग और मुझे लगता है ज्यादा तार्किक दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान को झुठलाने के बजाय हमें धर्म ग्रंथ को पढ़ने के अपने तरीके पर सवाल उठाना चाहिए। असली समस्या विज्ञान में नहीं थी बल्कि इस आधुनिक सोच में थी कि हम उत्पत्ति की वंशावलियों को एक ऐतिहासिक टाइमलाइन या कैलेंडर मान रहे थे। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। अगर हम वंशावलियों से समय का हिसाब नहीं लगा सकते और वे कैलेंडर नहीं है तो फिर उन्हें लिखा ही क्यों गया था?
ये बहुत अच्छा सवाल है।
मतलब इतने सारे नामों की सूची बनाने का प्राचीन दुनिया में क्या मकसद था अगर उन्हें समय मापने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना था?
इस क्यों को समझने के लिए ना हमें प्राचीन वंशावलियों के काम करने के तरीके को समझना होगा, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें बाइबल में ही मिल जाता है, नए नियम में, मत्ती यानी मैथ्यू के पहले अध्याय में।
अच्छा, मैथ्यू का पहला अध्याय?
हाँ, वहाँ ईसा मसीह की वंशावली दी गई है और उसे जानबूझकर 14-14 पीढ़ियों के 3 समूहों में बहुत ही सिमेट्रिकल तरीके से सजाया गया है। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन के निर्वासन तक 14, और निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां।
ये संरचना देखने में तो बहुत सुंदर और याद रखने में भी आसान लगती है, लेकिन अगर हम इस सूची की तुलना ऐतिहासिक रिकॉर्ड से करें तो एक बहुत बड़ी विसंगति सामने आती है।
बिल्कुल आती है।
मतलब मत्ती लिखते हैं कि यहोराम ने उज्जियाह को जन्म दिया, लेकिन अगर हम पुराने नियम के ऐतिहासिक किताबों को जाकर देखें तो यहोराम और उज्जियाह के बीच वास्तव में 3 और राजाओं का शासन था, अहिज्या, योवाश और अमजिया। मत्ती ने अपनी 14 पीढ़ियों के उस पैटर्न को बनाए रखने के लिए बीच की इन 3 पीढ़ियों को पूरी तरह से गायब भी कर दिया है।
हाँ, पूरी तरह हटा दिया है।
तो आज के समय में अगर कोई किसी कानूनी दस्तावेज में से तीन पीढ़ियों को ऐसे गायब कर दे तो उसे सीधे तौर पर धोखाधड़ी या मतलब रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा ना।
आज के आधुनिक नजरिए से ये छेड़छाड़ लग सकती है, मैं सहमत हूँ, लेकिन प्राचीन काल में विशेष रूप से एंशियंट नियर ईस्ट की साहित्यिक परंपराओं में ये बिल्कुल सामान्य बात थी।
अच्छा।
हाँ, वहाँ वंशावलियों का उद्देश्य कोई कैलेंडर बनाना नहीं होता था, बल्कि अधिकार या वंशानुगत रेखा को साबित करना होता था। हर एक पीढ़ी का हिसाब रखना उनका मकसद नहीं था।
तो जब वो कहते थे कि इसने उसको जन्म दिया।
हाँ, जब मूल हिब्रू में जन्म दिया या यलाद शब्द का इस्तेमाल होता था तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता था कि वो जैविक पिता ही है। इसका अर्थ का पूर्वज बना भी होता था।
ओ, समझ गया।
मत्ती का मुख्य उद्देश्य बस ये साबित करना था कि मसीह दाऊद के शाही वंश से आते हैं। उन तीन राजाओं के नाम छोड़ने से वो शाही दावा बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है।
यानी ये एक तरह का कानूनी पहचान पत्र या संपत्ति का दावा था। जैसे किसी को ये साबित करना हो कि वो फला राजघराने का असली वारिस है, उसे बस मुख्य ऐतिहासिक स्तंभों को छूना है, बीच की हर छोटी कड़ी को गिनना जरूरी नहीं है।
एग्जैक्टली। ये बिल्कुल प्राचीन बेबीलोन के राजाओं की सूचियों जैसा ही है। वहां भी मुख्य उद्देश्य सिंहासन की निरंतरता दिखाना होता था, न कि सटीक तारीखें तय करना।
तो अगर हम इसी सिद्धांत को वापस उत्पत्ति 11 पर लागू करें तो वो 292 साल वाला जो विरोधाभास था वो तो अपने आप ही सुलझ जाता है।
बिल्कुल सुलझ जाता है। जब कहा जाता है कि शेम से अर्श पक्षद आया, तो बीच में कई पीढ़ियां हो सकती हैं जिन्हें बस छोड़ दिया गया हो।
हाँ, लेखक के लिए यह बताना जरूरी था कि अब्राहम का वंश नूह से जुड़ता है। उनके बीच कितने सौ या हजार साल बीते ये उनके लिए महत्वहीन था।
बिल्कुल सही। और यह हमें बीबी वॉरफील्ड के उस सबसे अहम निष्कर्ष की ओर ले जाता है जो हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र है।
वो क्या है?
अगर प्राचीन सूचियों में पीढ़ियां छोड़ी जा सकती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम कभी भी इन नामों को जोड़कर दुनिया की उम्र का पता नहीं लगा सकते। वॉरफील्ड का स्पष्ट रूप से मानना था कि बाइबल का डेटा हमें दुनिया के निर्माण या जल प्रलय का समय बताने के लिए पूरी तरह से दिशाहीन छोड़ देता है। यह धर्मशास्त्र के नजरिए से एक खुला प्रश्न है।
एक खुला प्रश्न, ये बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र को विज्ञान से अलग कर देता है। मतलब बाइबल ये दावा ही नहीं कर रही है कि वो हमें सटीक समय बता रही है। हम ये मान सकते हैं कि इन महान ऐतिहासिक घटनाओं के बीच कोई भी यथार्थवादी समय बीत चुका होगा।
हाँ, अगर कोई दुनिया के निर्माण की सटीक तारीख जानना चाहता है तो उसे भूविज्ञान और कार्बन डेटिंग जैसे वैज्ञानिक साधनों पर ही निर्भर रहना होगा।
और मुझे लगता है कि ये श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक राहत की बात होगी। अक्सर यह मान लिया जाता है कि अगर कोई पृथ्वी को अरबों साल पुराना मानता है तो वो धर्म ग्रंथों को नकार रहा है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी की उम्र कोई धार्मिक मुद्दा है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं है।
हालांकि यहाँ एक और भ्रम पैदा होता है जो मैंने बहुत बार देखा है। कई बार पुरानी पृथ्वी या ओल्ड अर्थ के सिद्धांत को सीधे तौर पर डार्विन के विकासवाद या एवोल्यूशन से जोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है कि अगर आपने माना कि पृथ्वी पुरानी है तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है।
हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और वैन रॉय ने अपने नोट्स में इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। देखिए, समय का विस्तार एक बात है और उस लंबे समय में जीवन का विकास कैसे हुआ, ये पूरी तरह से एक अलग वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रश्न है।
दोनों अलग अलग चीजें हैं।
बिल्कुल। पुरानी पृथ्वी को मानने का मतलब केवल ये स्वीकार करना है कि ब्रह्मांड और पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है। ये बिल्कुल भी ये मांग नहीं करता कि हम केवल नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति को स्वीकार कर लें।
मतलब समय केवल वो कैनवास है जिस पर इतिहास लिखा गया है।
एग्जैक्टली। समय केवल कैनवास है, ये इस बात को तय नहीं करता कि वो इतिहास कैसे लिखा गया है।
ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और मुझे लगता है कि प्राचीन भाषा को समझने का ये तरीका जल प्रलय के स्वरूप पर भी लागू होना चाहिए। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि जल प्रलय ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ग्लोबल या पूरे विश्व का नक्शा आ जाता है।
हाँ, लेकिन प्राचीन भाषा में सभी या ऑल शब्द का संदर्भ अक्सर बहुत सीमित होता था। हिब्रू भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है कोल, जिसका अर्थ सब या संपूर्ण होता है, लेकिन इसका दायरा हमेशा भौगोलिक रूप से पूरी दुनिया नहीं होता था।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ ना, इसे समझने के लिए हमें यूसुफ की कहानी को देखना चाहिए। जब मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था तो ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी के सभी देश यूसुफ के पास अनाज खरीदने आए।
पृथ्वी के सभी देश, अगर हम इसे आज के शाब्दिक अर्थ में लें तो इसका मतलब होगा कि मिंग राजवंश के चीन से या दक्षिण अमेरिका के माया सभ्यता के लोग नावों में बैठकर मिस्र अनाज लेने आ रहे थे,
जो कि पूरी तरह असंभव है।
ऐतिहासिक और तार्किक रूप से पूरी तरह असंभव है। स्पष्ट रूप से वहां सभी देशों का मतलब उस समय की ज्ञात दुनिया से था, यानी पूर्वी भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी क्षेत्र।
बिल्कुल, और उसी तर्क के आधार पर जल प्रलय के संदर्भ में भी पूरी पृथ्वी का अर्थ उस समय के मानव जाति के ज्ञात दायरे तक ही सीमित हो सकता है।
यानी वो एक स्थानीय बाढ़ रही होगी।
हाँ, एक स्थानीय लेकिन उस समय की ज्ञात मानव आबादी के लिए पूर्ण विनाशकारी बाढ़। यही कारण है कि भूवैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में एक ही समय पर आए किसी जल प्रलय के सबूत नहीं मिलते, लेकिन मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में बड़ी स्थानीय बाढ़ों के कई पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं।
तो मतलब वंशावलियां कैलेंडर नहीं है, पृथ्वी की उम्र एक खुला प्रश्न है और घटनाओं का वर्णन आज के भौगोलिक अर्थों में नहीं किया गया है।
बिल्कुल।
तो फिर एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, अगर उत्पत्ति की किताब का उद्देश्य विज्ञान या इतिहास की कोई सटीक टाइमलाइन देना नहीं है तो फिर इसके पहले अध्याय का असली उद्देश्य क्या है? ये ग्रंथ किस आधार पर खड़ा है?
इसकी नींव इसकी साहित्यिक संरचना और इसके गहरे धार्मिक संदेश में है। उत्पत्ति की संरचना को समझने के लिए हमें एक विशेष हिब्रू शब्द पर ध्यान देना होगा और वो है टोलेडोथ।
टोलेडोथ, इसका क्या मतलब होता है?
इसका अनुवाद आमतौर पर ये पीढ़ियां हैं या ये इतिहास है के रूप में किया जाता है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की चौथी आयत से इस शब्द का प्रयोग शुरू होता है और ये पूरी किताब में एक स्ट्रक्चरल मार्कर की तरह काम करता है। ये पूरे ग्रंथ को 10 अलग अलग ऐतिहासिक खंडों में बांटता है। यह कोई रैंडम घटनाओं का संग्रह नहीं है बल्कि एक बेहद सुगठित साहित्यिक कृति है।
ये साहित्यिक दृष्टिकोण तब और भी ज्यादा स्पष्ट और आश्चर्यजनक हो जाता है जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की तुलना उसके आसपास की अन्य प्राचीन संस्कृतियों की निर्माण कथाओं से करते हैं, जैसे बेबीलोन की प्रसिद्ध कथा एनुमा एलिश।
हाँ, एनुमा एलिश एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों ही कहानियां दुनिया की शुरुआत की बात करती हैं, लेकिन दोनों का नजरिया एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है।
बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एनुमा एलिश में दुनिया का निर्माण देवताओं के बीच एक भयानक युद्ध और अराजकता का परिणाम है।
हाँ, वहाँ टियामैट जो खारे पानी की देवी है और एप्सू जो मीठे पानी का देवता है वो आपस में लड़ रहे हैं।
देवता एक दूसरे को मार रहे हैं और मारे गए देवताओं के शरीर के टुकड़ों से दुनिया बन रही है। मतलब वहाँ का ब्रह्मांड संघर्ष, रक्तपात और बहुदेववाद से भरा हुआ है।
और इसके ठीक विपरीत उत्पत्ति का पहला अध्याय एक गहरी और शांत भव्यता के साथ शुरू होता है। वहाँ किसी देवता के जन्म की कोई कहानी नहीं है, देवताओं के बीच कोई युद्ध नहीं है, वहाँ ईश्वर का अस्तित्व बस मान लिया गया है। पहली पंक्ति बस इतना कहती है, शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई पूर्व कथा नहीं, ये अपने आप में प्राचीन दुनिया के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था।
और इसी क्रांतिकारी विचार को गहराई देने के लिए प्राचीन लेखक ने भाषा का एक बहुत ही रहस्यमयी और खूबसूरत टूल इस्तेमाल किया है।
हाँ, एलोहिम,
जो व्याकरण के हिसाब से बहुत दिलचस्प है।
बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये शब्द अपने आप में एक विरोधाभास है। एलोहिम शब्द व्याकरणिक रूप से बहुवचन यानी प्लूरल है। इसके अंत में लगा प्रत्यय इसे बहुवचन बनाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं होना चाहिए।
लेकिन उत्पत्ति की पहली ही आयत में इस बहुवचन संज्ञा के साथ जो क्रिया यानी वर्ब इस्तेमाल की गई है बनाया, वो एकवचन यानी सिंगुलर है।
ये तो व्याकरण के नियमों का सीधा उल्लंघन हो गया ना।
दिखने में नियम का उल्लंघन लगता है, लेकिन ये कोई व्याकरणिक गलती नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर किया गया भाषाई चुनाव है। विद्वान इसे महिमा का बहुवचन या प्लूरल ऑफ मेजेस्टी कहते हैं।
अच्छा, प्लूरल ऑफ मेजेस्टी।
हाँ, ये बहुदेववाद या कई देवताओं का संकेत बिल्कुल नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे इतिहास में कोई महान सम्राट खुद के लिए मैं की जगह हम का इस्तेमाल करता है।
बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने,
है ना। वह अकेला व्यक्ति है लेकिन उसकी शक्ति और उसका रुतबा इतना विशाल है कि एक वचन शब्द उसे समाहित नहीं कर सकता। वो कहता है हम आदेश देते हैं। ये भाषा के नियमों को मोड़कर किसी चीज को असीमित और भव्य दिखाने का तरीका है।
एग्जैक्टली उत्पत्ति का लेखक ये स्पष्ट कर रहा था कि ये एक एलोहिम उन सभी छोटे छोटे आपस में लड़ते बेबिलोनियन देवताओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और पूर्ण है।
तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें उन्हें उनके अपने चश्मे से उनकी अपनी शर्तों पर पढ़ना होगा।
बिल्कुल।
जब हम एक प्राचीन वंशावली को आधुनिक स्प्रेडशीट की तरह ट्रीट करते हैं या प्राचीन कविता और धर्मशास्त्र को भूविज्ञान की कोई आधुनिक पाठ्य पुस्तक मान लेते हैं तो हम न केवल उस ग्रंथ का मूल अर्थ खो देते हैं बल्कि हम ऐसे कृत्रिम विवाद पैदा कर लेते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। विज्ञान और धर्म के बीच जो तथाकथित टकराव हमें दिखता है वो अक्सर ग्रंथों की गलत समझ से पैदा होता है, न कि स्वयं उन ग्रंथों से।
उनका ध्यान इस बात पर बहुत कम था कि ये सब सटीक रूप से कब हुआ। और जाते जाते एक विचार में छोड़ना चाहूंगा, सोचने वाली बात यह है कि आज के हमारे समाज में हम पूरी तरह से कब के प्रति जुनूनी हो गए हैं। हमें हर घटना की सटीक तारीख चाहिए, हर चीज को एक स्पष्ट टाइमलाइन पर बिठाना है। हम इतिहास और जीवन दोनों को एक कैलेंडर और स्प्रेडशीट की तरह देखते हैं। तो क्या यह संभव है कि हर चीज को समय रेखा पर नापने की ये जिद दरअसल हमारे अपने युग का एक वैचारिक अंधापन है? क्या होगा अगर हम भी अपनी जिंदगी में और अपने आसपास की दुनिया को समझने में चीजों के कब होने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि वे क्यों हो रही हैं? शायद तब हम उन प्राचीन रूममेट्स वाले गणितीय विरोधाभासों में उलझने के बजाय इतिहास और जीवन की असली गहरी कहानी को समझ पाएंगे।